नमस्कार, आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं किरण शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, वैश्विक अनिश्चितता के बीच 7.8% की जीडीपी वृद्धि भारत की आर्थिक शक्ति को दर्शाती है। नेपाल में अचानक आई बाढ़ से प्रभावित जल विद्युत परियोजना की सुरंगों में फंसे लोगों को बचाने के लिए भारत और नेपाल का संयुक्त अभियान जारी। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन की राजधानी कीव पर 72 घंटे के लिए हमले रोकने का आदेश दिया। और चाइना मास्टर्स बैडमिंटन में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी पुरुष डबल्स फाइनल में पहुंचे। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच भारत की 7.8% की तिमाही वृद्धि आर्थिक शक्ति को दर्शाती है। उन्होंने कहा कि भारत ने नीतिगत अवरोध से नीतिगत गतिशीलता तक का लंबा सफर तय किया है। श्री मोदी ने नई दिल्ली में एसआरसीसी के शताब्दी समारोह में उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि दुनिया भारत को सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बनते हुए देख रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि एसआरसीसी ने वर्षों से छात्रों की कई पीढ़ियों को सीखने, आगे बढ़ने और समाज में बदलाव लाने का अवसर दिया है।
जब कोई इंसान 100 वर्ष जीता है तो उसे अनुभवों का सागर माना जाता है, और जब कोई संस्थान 100 वर्ष का होता है तो वो उपलब्धियों और प्रेरणाओं का महासागर हो जाता है। अपनी 100 वर्षों की इस यात्रा में एसआरसीसी ने पीढ़ियों को गढ़ा है, उन्हें उज्जवल भविष्य से जोड़ा है। जो आए उन्होंने पढ़ा और जो निकले वो गढ़े हुए निकले।
प्रधानमंत्री ने कहा कि 140 करोड़ भारतीय मिलकर भारत को विकसित और आत्मनिर्भर बनाएंगे। इससे पूर्व केंद्रीय शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने अपने भाषण में एसआरसीसी द्वारा वर्षों से उच्च स्तर बनाए रखने की सराहना की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आज भारत तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। उन्होंने कहा कि वैश्विक बाजार में कुशल मानव संसाधनों की आवश्यकता है। केंद्रीय मंत्री ने इसे युवा आबादी के लिए एक अवसर बताया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि भारत शिलालेखों और समुद्री व्यापार से लेकर गणित तक अपनी विरासत का अध्ययन करने और इसे दोबारा प्राप्त करने में पहले से कहीं अधिक आत्मविश्वास से भरा हुआ है। नई दिल्ली में वार्षिक इतिहास पुरस्कार समारोह और डॉ एस एल भैरप्पा स्मृति व्याख्यान में श्रीमती सीतारामन ने कहा कि भारत अब आत्मनिर्भर है।
इंडिया टुडे इज सेल्फ अश्योर्ड।
हमने इस मामले में किसी और की अनुमति का इंतजार करना छोड़ दिया है और अब हम अपनी विरासत का अध्ययन खुद कर रहे हैं। हम शिलालेखों को पढ़ रहे हैं, अपने समुद्री व्यापार के इतिहास को समझ रहे हैं और गणित के जरिए कहानियों को पूरी प्रसन्नता और सटीकता के साथ सामने ला रहे हैं।
टेलिंग दीज स्टोरीज विद रियल प्लेजर।
भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने स्वस्थ असहमति और विचार विमर्श की संस्कृति के महत्व पर जोर दिया। नई दिल्ली में चल रहे ब्रिक्स मुख्य न्यायाधीश मंच के अंतर्गत भारत के मुख्य न्यायाधीश ने ब्रिक्स के सदस्य देशों और सहयोगी देशों के प्रतिनिधिमंडलों को संबोधित किया। एक रिपोर्ट।
न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने उचित न्याय सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने याद दिलाया कि नालंदा विश्वविद्यालय एक समय में सबसे प्रतिष्ठित शैक्षणिक केंद्र हुआ करता था, जहां विश्व भर के विद्यार्थियों और शोधकर्ताओं को बिना किसी भेदभाव या बाधा के प्रवेश दिया जाता था। उन्होंने कहा कि ब्रिक्स को भी जीवंत नालंदा विश्वविद्यालय के रूप में जाना जाना चाहिए। मध्यस्थता पर एक सत्र के दौरान न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने मध्यस्थता संस्थानों के बीच सहयोग को मजबूत करने, पेशेवर प्रशिक्षण, बहुभाषी क्षमता और न्यायाधीशों, मध्यस्थों, वकीलों और व्यवसायों के बीच संवाद को बढ़ावा देने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि मध्यस्थता को मजबूत किया जाना चाहिए ताकि संवाद कायम रह सके, व्यापार जारी रह सके और ब्रिक्स के सदस्य देशों के बीच विश्वास बढ़ सके। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जया भारती।
विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। नेपाल में आई विनाशकारी बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 1344 हो गई है। प्रभावित 8 जिलों में बचाव अभियान जारी है, जबकि लगभग 5000 लोग अभी भी लापता हैं। अब तक 13000 से अधिक लोगों को बचाया जा चुका है। 26 अगस्त को नेपाल तिब्बत सीमा के पास हिमस्खलन के कारण अचानक बाढ़ आ गई थी। इस आपदा ने उत्तरी और मध्य नेपाल में व्यापक तबाही मचाई, जिससे घर, सड़कें, पुल और जल विद्युत परियोजनाएं क्षतिग्रस्त हो गईं। इस बीच नेपाल, भारत और चीन की बचाव टीमें बाढ़ प्रभावित जल विद्युत परियोजनाओं की सुरंगों में फंसे लोगों को बचाने के लिए संयुक्त अभियान चला रही हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन की राजधानी कीव पर 72 घंटे के लिए हमले रोकने का आदेश दिया है। एक रिपोर्ट।
क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने बताया कि राष्ट्रपति पुतिन ने 3 दिनों तक कीव पर कोई हमला न करने का आदेश दिया है। उन्होंने कहा कि ये निर्णय शांति वार्ता के लिए अमरीकी दूतों की कीव यात्रा के मद्देनजर लिया गया। कुछ दिन पहले बिश्केक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से कहा था कि मानवता के हित में यूक्रेन में युद्ध समाप्त होना आवश्यक है। श्री मोदी ने कहा कि भारत युद्ध रोकने के लिए हर शांति प्रयास का समर्थन करेगा। पूर्वी यूक्रेन में यूक्रेनी सेना और रूस समर्थित अलगाववादियों के बीच कई वर्षों से संघर्ष जारी है, जिसके परिणाम स्वरूप भारी जानमाल का नुकसान हुआ है, बुनियादी ढांचे नष्ट हुए हैं और लाखों लोग विस्थापित हुए हैं। विश्व दर्पण समाचार के लिए शक्ति सिंह।
अमेरिका ने सऊदी अरब के लगभग $5 अरब के संभावित सैन्य हथियार सौदे को मंजूरी दे दी है। अमरीकी विदेश विभाग की ओर से अमरीकी कांग्रेस को भेजी गई अधिसूचना के अनुसार प्रस्तावित सौदे में हजारों सटीक निशाना साधने वाली किट, सामान्य इस्तेमाल के बम, कंटेनर, स्पेयर पार्ट्स, सहायता उपकरण तथा तकनीकी और लॉजिस्टिक सेवाएं शामिल हैं। अमरीकी विदेश विभाग ने कहा है कि इस सौदे से सऊदी अरब की सुरक्षा मजबूत होगी और इससे अमरीका की विदेश नीति तथा राष्ट्रीय सुरक्षा के उद्देश्यों को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। डेनमार्क और यूरोपीय संघ के 4 अन्य देशों ने यूरोपीय संघ से बाहर के देशों में प्रवासियों की वापसी के लिए केंद्र स्थापित करने की एक रूपरेखा पर सहमति जताई है। इन देशों को उम्मीद है कि इन केंद्रों में अगले वर्ष से प्रवासियों को भेजा जा सकेगा। ये समझौता कोपनहेगन में आयोजित बैठक के बाद सामने आया। ये यूरोपीय संघ के उन प्रवासियों को संघ से बाहर तीसरे देशों में भेजने की नई कोशिश है जिनसे चरण आवेदन खारिज हो चुके हैं। इस पहल में डेनमार्क, जर्मनी, नीदरलैंड, ऑस्ट्रिया और ग्रीस शामिल हैं। सात्विक साई राज, रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी चाइना मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल्स फाइनल में पहुंच गई है। भारतीय जोड़ी ने आज सेमीफाइनल मुकाबले में मलेशिया के नूर मोहम्मद अजरीन अयूब और टैन वी क्योंग को 21-16, 18-21, 21-11 से हराया। महिला T20 क्रिकेट एशिया कप में भारत ने पाकिस्तान को 7 विकेट से हरा दिया है। पाकिस्तान के 56 रन के लक्ष्य को भारत ने 8 ओवर और 4 गेंद में 3 विकेट खोकर हासिल कर लिया। टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने उतरी पाकिस्तान की टीम 18 ओवर और 1 गेंद में महज 55 रन पर सिमट गई। श्री चरनी और प्रेमा रावत ने 3-3 और दीप्ति शर्मा ने 2 विकेट लिए। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, वैश्विक अनिश्चितता के बीच 7.8% की जीडीपी वृद्धि भारत की आर्थिक शक्ति को दर्शाती है। नेपाल में अचानक आई बाढ़ से प्रभावित जल विद्युत परियोजना की सुरंगों में फंसे लोगों को बचाने के लिए भारत और नेपाल का संयुक्त अभियान जारी। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन की राजधानी कीव पर 72 घंटे के लिए हमले रोकने का आदेश दिया। और चाइना मास्टर्स बैडमिंटन में सात्विक साईराज, रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी पुरुष डबल्स फाइनल में पहुंचे। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।